Rama, Rama, Hare Hare.
Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. तो दूसरे दिन आज फिर सूरत में सतीश के निवास स्थान पे सायंकाल के सत्संग में आप सबका इस्कान संस्था की ओर से स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परिवार का। पिताजी क्या शुभ नाम? नंदलाल। तो नंदलाल का परिवार घर हो गया ना, नंदलाल जी के। नंदलाल दादी ने नाम दिया? हाँ, बहुत अच्छा नाम दिया। नंदलाल जी के निवास स्थान पे सुपुत्र सतीश और वो बच्ची का जन्मदिन भाविका का और काजल। हाँ, तो अपने घर में आप लोगों ने सत्संग का आयोजन किया है। आपका धन्यवाद। सतीश का प्रश्न ये है कि संसार में हम कैसे आए। घर तो आप अपनी चॉइस का खरीद कर सकते हो, जाके जितनी बजट होगी वैसा घर खरीद कर सकते हो। कार भी अपने आप चॉइस की खरीद कर सकते हो, जितनी बजट है उस हिसाब से कर सकते हो। कपड़ा भी अपनी चॉइस का जाके बाजार में खरीद कर सकते हो, लेकिन किसके घर में जन्म लेना है ये आपके चॉइस से नहीं कर सकते। हाँ, लड़का होना है कि लड़की होना है ये आपकी चॉइस नहीं। काला होना है कि गोरा होना है ये आपकी चॉइस नहीं। सूरत में जन्म लेना है कि अमेरिका में जन्म लेना है ये आपकी चॉइस नहीं। ये सत्य है कि झूठ है? ये हमारी चॉइस नहीं है, तो किसकी चॉइस है? इसको कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कर्मणा देव नैत्रेण। कर्म के फल के अनुसार, तो जो कर्म का फल देता है, कौन कर्म का फल देने वाला कौन है? कर्म का फल दाता कौन है? सीधा सा ईश्वर है। बराबर, ऐसा सीधा सा ऐसे समझ में आना चाहिए। कर्मण एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। फल दाता भगवान है, तो जो फल दाता है वो हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए जब कोई शरीर देना होता है तो किस घर में देना है, किस माता पिता के, किसको माता पिता उस जीव का बनाना है, कौन से देश में कहां जन्म देना है, ये देव नेत्रेण हमारा उसमें बस नहीं चलता। इसलिए यहां शब्द लिखा है भगवद गीता में अवशम। अवशम का मतलब बेबस होकर। तो किसका बस चलता है? प्रकृति बसात, प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति के नियमों के अंतर्गत। तो देव नेत्रेण इसका मतलब भगवान के आंखों के नीचे अथवा भगवान के निर्देश में देता कौन है जन्म? बोला प्रकृति, प्रकृति वशात, प्रकृति के वशीभूत होकर और स्वयं बेबस होकर जीव इस धरती के ऊपर आता है। कैसे? प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय विसर्जामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम अवसम प्रकृते अवशात। भूत ग्रामम, प्राणियों के समूह के समूह संसार में अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए बेबस होके जहां प्रकृति जिस गर्भ में जिस देश में डालना चाहती है वहां पड़ना पड़ता है। लेकिन प्रकृति अन्याय नहीं करती, प्रकृति भगवान के निर्देश में कार्य करती है। लेकिन कौन से आधार पे करती है? कर्म के फल के आधार के ऊपर करती है। तो कर्म कौन करता है? जो कर्म करता है वो ही अपना नया जन्म कहां लेना है उसका निर्माता है। भगवान तो केवल क्या करते हैं? ऊपर से देखते हैं उपदृष्टा, अनुमंता अनुमति देते हैं, व्यवस्था सारी बनाते हैं। किसके आधार पे? हमारे कर्मों के फल को भोगने के आधार के ऊपर। और तो यहां प्रश्न ये उठ जाएगा कि तो फिर आखिर में कौन कर्म करता है? ये एक बात समझ में आ जाए, कर्म जिसको हमारे को बदलने का भगवान ने अधिकार दिया है, कर्म एव अधिकार, एव डाला इसलिए केवल कर्म करने का अधिकार है, और कोई अधिकार आपका नहीं। संसार में कर्म करने का अधिकार है हमको, कर्म एव अधिकारस्ते। तो हमारा अधिकार क्या है? कर्म करने का। अब ये कैसा कर्म करना है, ये हमारी स्वतंत्रता है। किसकी? हमारी, हमका, हमारी क्या परिभाषा है, हम क्या है? जीव की स्वतंत्रता इतनी भगवान ने केवल मानव जन्म में, और किसी जन्म में नहीं, और किसी जन्म में स्वतंत्रता नहीं है। और कोई भी जन्म, कोई भी योनि कर्म योनि नहीं है, उसको भोग योनि बोलते हैं। देवकांत योनि कर्म योनि नहीं है, लेकिन वो भोग योनि भी नहीं है, वो भगवान के अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है। तो भोग योनि तो नहीं हुई उनकी, लेकिन वहां भोग बहुत ज्यादा है। लेकिन जो देवताओं की योनि है, देवता का पद भगवान चयन करते हैं कि किसको इंद्र बनाना है, ये समय में कौन इंद्र रहेगा, और वो फिर सात ऋषि कौन से रहेंगे। तो ये जो असल में जो जीव भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, सुर बोलते हैं, सुर का मतलब देवताओं को बोलते हैं सुर, और इंद्र को बोलते हैं सुरेश्वर, सुरों का ईश्वर, उनका लीडर। तो सुर का अर्थ सीधा ये कि भगवान के सुर में सुर मिलाने वाले, और असुर का मतलब है जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं। इसकी सीधी भाषा ये, इसका मतलब भगवान की आज्ञा पालन करने वाले। तो भगवान का आज्ञा पालन करने वाला फिर उसको भक्त होना चाहिए। वो भक्त क्यों नहीं है, देवता क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छा अभी भी कुछ चीजों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की रहती है। भगवान की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उनके मन में किसी चीज को संचालन करके अध्यापन, किसी का छोटा ईश्वर बनने की इच्छा होती है। तो भगवान की आज्ञा पालन करते हुए देवताओं को इस संसार के पालन का कार्य दिया जाता है, और उस कार्य में कहीं विघ्न पड़ता है तो भगवान आके उस कार्य को संवारते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे, हर युग में इंद्र के लोक में भी कभी समस्या होती है तो मैं स्वयं वहां प्रकट होकर उनका उद्धार करता हूं। तो भगवान धरती पे अवतार लेते हैं, ऐसे नहीं है, समय समय के ऊपर देवताओं का भी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो बाकी जोनियां 84 लाख जो जोनियां हैं, प्राय मनुष्य नीचे की जोनियां, इसको ऐसे मानना चाहिए, वो सब पशु पक्षी, असल में ये 84 जोनियां जो आती हैं, जलचर जल में 9 लाख हैं जैसे, अथवा जो पेड़ पौधे आदि है, फिर उड़ने वाले पक्षी परंदे आदि हैं ऐसे, तो ये सब जो जोनियां हैं ये सब भोग योनियां है। भोग योनियों का मतलब है एक में जितना समय रहना है उतना समय रहेंगे, जो उसके अंदर उनको खाना है पीना है जो भी उसका करना है उसमें करेंगे, फिर आगे प्रोमोशन होकर चले जाएंगे, फिर वहां से आगे ऑटोमेटिकली प्रोमोट होते चले जाएंगे। तो उसको कर्म करने का अधिकार है ही नहीं। लेकिन आप मानव मूर्ख कहते हैं हम भोग करना चाहते हैं, हमारी योनि भी भोग योनि होनी चाहिए, हमारी योनि भोग योनि है नहीं और सब भोग में यहां लगे हुए हैं, ये गड़बड़ हो गई सारी। इस संसार में सबका आज जो मानसिकता है वो भोग की लगी हुई, सभी भोग करना चाहते हैं, कर्म करके उसको यहीं भोगना चाहते हैं, और कर्म में परिवर्तन लाने की इच्छा नहीं। हम भोग योनि हमारी नहीं, हमारी कर्म योनि है। अब कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मानव के ही देह में अथवा मानव शरीर में, मानव योनि में भगवान ने दी है स्वतंत्रता। किस चीज की? इच्छा करने की। हर एक चीज हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। और भगवान अनादि काल से सबकी इच्छाएं पूरी करता आ रहा है। भगवान अनादि काल से सबकी इच्छाएं पूरी करता आ रहा है, तो बहुत लोग खुश होते हैं। फिर तो हमारी इच्छा है कि हम अगली बार जो है बंबई के अंदर बड़े फ्लैट लेके कालबा देवी में नया दुकान कपड़े का खोलेंगे। मनो तो भगवान के कोई बात नहीं, अभी ये जन्म तो बहुत छोटा है, तो सूरत में काम खत्म कर ले, अगली जन्म में तेरा कालबा देवी में जन्म हो जाएगा। तो ठीक है, इच्छा पूरी करेंगे, ऐसा कि नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तत्काल नहीं है इस काम, थोड़ा समय के साथ है, लेकिन इच्छा आप करोगे तो होगा, आपकी इच्छा के ऊपर है। अब निर्भर हमारी इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो इसमें सिर्फ बुद्धिमानी ये होनी चाहिए कि हमें इच्छा क्या करनी, असल में मानव जन्म में क्या इच्छा करनी चाहिए, ये एक शिक्षा अगर कोई ठीक तरह समझ ले तो फिर उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर है। हमारी इच्छा जब भोग की होती है तो भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये इच्छा है, इच्छा पूरी तो वही करेगा, और कोई इच्छा पूरी करने वाला नहीं है। तो जब उसको प्रार्थना करते हैं हमारी ये इच्छा है, तो वो उसकी अनुमति दे देता है, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो पूरी करो। तो अनुमति देने का क्या अर्थ है, वो उसका दायित्व नहीं देता है, हरे कृष्णा, ये जिम्मेवारी नहीं देता है, अनुमति देता है। अनुमति ऐसे देनी होती है जैसे सरकार को आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो कि हमारे को कारखाना खोलना है, तो गवर्नमेंट करेगा अप्रूव। लेकिन अब कारखाने में घाटा होगा फायदा होगा उसमें गवर्नमेंट जिम्मेवार तो नहीं है ना। तो अनुमति का अर्थ है कि आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर दिया गया, अब उसमें जो कुछ आप करोगे उसके जिम्मेवार आप हो। तो भगवान ऐसे अनुमति देता है, स्वयं नहीं देता है, परमात्मा के रूप में, परमात्मा का भी भगवान का जो विस्तार है वो केवल इस भौतिक जगत के लिए है। परमात्मा की जरूरत वैकुंठ में नहीं है, वहां भगवान साक्षात बैठा है तो परमात्मा की क्या जरूरत है। परमात्मा हमारे साथ, भगवान हमारा सुहृद मित्र है, इसलिए परमात्मा के रूप में आया है, है तो हमारा शुभ चिंतक, हम उसको भूल गए हैं लेकिन उसने हमें कभी छोड़ा नहीं है, इसलिए हमारे साथ आया है। जब हम वापस घर में चले जाएंगे फिर उसकी जरूरत नहीं है। तो परमात्मा का अस्तित्व सिर्फ इस भौतिक जगत में, परमात्मा की आवश्यकता वैकुंठ में, गोलोक में परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, वहां तो भगवान है। तो परमात्मा हृदय में बैठा है हमारे, जीव की जो इच्छा होती है उसको परमात्मा ऐसे भांप लेता है जैसे फूल इधर पड़ा है और हम इधर बैठे हैं तो फूल की खुशबू जैसे हमको आ जाती है। अब फूल का उसमें कोई दोष नहीं है, कोई फूल का दोष है उसमें, कोई दोष नहीं है। तो ऐसे हमारी जो इच्छा है वो भगवान भांप लेता है कि इसकी ये इच्छा है, और वो हमारा सुहृद मित्र है और हमको स्वतंत्रता दी है इच्छा करने की। तो उसके लिए वो कहता ठीक है तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम करो, फिर जिम्मेवार तुम हो। नहीं नहीं हमको तो यही करना है बार बार। तो फिर इस शरीर में सब इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, ये संभव नहीं है। आप देख लीजिए कि हम जितनी इच्छाएं करता है इंसान वो एक जन्म में पूरी हो जाए ये संभव नहीं लगती है। लगती है क्या? आप अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाओ और आपकी उम्र को गिनो, पूरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो दादी कहेगी अभी मेरा पोता है या अभिषेक की शादी में देखना चाहूंगी, उसका मन में अभी ये विचार होगा। क्यों नंदलाल, पूछो दादी को अभिषेक, दादी हाँ विचार। इच्छा बनी रहती है, अंत समय तक इच्छा बनी रहती है, ये सच है कि झूठ है? तो इसलिए इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा ये जन्म सब कुछ नहीं है, नहीं तो यही सब कुछ इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए ना। तो इच्छा कहां होती है, इच्छा कहां होती है, इच्छा उत्पन्न किधर होती है, वो स्थान क्या है, जीव इच्छा करता है। इच्छा करना जीव, बाकी तो सब जड़ है, जड़ कैसे इच्छा करेगी? बाकी जो आठ तत्व का जना बना हुआ शरीर है वो तो सब जड़ है, वो तो इच्छा नहीं कर सकता है ना। इच्छा तो कोई चेतन चीज होगी तभी होगी ना। तो इच्छा आत्मा करता है, अनुमति परमात्मा देता है, और फिर उस इच्छा पूरी करने के लिए जो जो शरीर चाहिए, जिसमें वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, वो शरीर की सारी सामग्री प्रकृति उपलब्ध कर देती। और फिर क्योंकि प्रकृति गाड़ी बना देती है जिसके अंदर हमको बिठाया गया। अब एक बार आपको जहाज में बिठा दिया जाए तो आपको जहाज की स्पीड से चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते अब मेरे को स्लो चलाओ, नहीं चले स्लो कर सकते, फिर तो आपको उसी में चलना पड़ेगा। और एक बार बैठ गए तो फिर बैठ उतरना, तब उतरेगा तभी उतरना पड़ेगा। तो इस संसार में हम आए हैं, मान लो कि इच्छा से आए कि ना इच्छा से आए, हमारी इच्छा तो नहीं थी, हमारी इच्छा तो भोग की केवल थी। हमें क्या पता यहां मुश्किल भी पड़ेगी, मुश्किल का हमें मालूम नहीं था कि यहां परेशानी होगी। आदमी केवल सुख का सोचता है लेकिन दुख उसके पीछे लगा हुआ है इसका मालूम नहीं है उसको। एक श्लोक बहुत अच्छा भगवद गीता का है, ये संस प्रसजा भोगा दुख योन्य एवते, ये संस प्रसजा भोगा दुख योन्य एवते। जो भोग इंद्रियों के विषयों से भोग करने से उत्पन्न होते हैं उसी के गर्भ में दुख होता है। ये संस प्रसजा भोगा, संस प्रजा मतलब इंद्रियां विषयों में जब भोग करना चाहती हैं तो उसी के गर्भ में दुख है। ये संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते, दुख योनि का मतलब दुख का गर्भ है, भोग ही के अंदर रोग छुपा हुआ है, उसी के अंदर है। आद अंतवंत, और ये जो सुख है वो शुरू भी होता है और अंत भी हो जाता है उसका, और फिर जब अंत होता है तो वही सुख दुख के रूप में दिखने लगता है। न तेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान है ऐसे क्षणक सुख में आनंद लेना पसंद नहीं करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो सहनशीलता पैदा करते हैं। इसके बाद का श्लोक है, शक्नोति यह सौरुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, ये शरीर जब तक छूट नहीं जाए, जब तक जीवित है, अगर उसमें ये हिम्मत है, शक्नोति, अगर वो कर सकता है क्या सहनशीलता, बर्दाश्त करने की उसमें ताकत है, किस चीज को बर्दाश्त करने की, काम क्रोध, इच्छा का मतलब है काम, कामना, वही काम कामना है, उस कामनाओं के वेग को, और कामनाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। क्रोध कामना सूक्ष्म है जो दिखती नहीं है, और क्रोध उसका स्थूल रूप है जो दिखता है। कामना मेरे दिल में है और पूरी नहीं हुई तो मेरे को क्रोध आया, तो कामना का क्रोध भाई, काम और क्रोध दोनों ये बस ऐसे जैसे बड़ा छोटा भाई है, बस साथ में ही बैठे हुए, एक दिखता नहीं है एक दिखता है। तो शक्नोति यो स्वरूप प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोध उद्भवम वेगम। अच्छा, ये इच्छा का भी वेग होता है, माने आपको कभी तीव्र इच्छा होती है कि अभी मैं मानो कि ये चीज खा लूं, लेकिन थोड़ी देर उसको भूल जाओगे तो फिर टाइम गुजर जाएगा, फिर वो याद नहीं आएगा। एक समय होता है तभी अच्छा दिल का, भाई खाना है ये मेरे को खाना है, उसी वक्त होता है, बाद में नहीं होगा, वेग में आता है। क्रोध भी वेग में आता है, कि सारा दिन तो क्रोध नहीं कर सकते, वही 15 मिनट के लिए आया नहीं आया फिर चला जाएगा। ये सब वेग में आते हैं, बस छोली की तरह आते हैं, ऐसे आंधी की तरफ आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, जब कोई चीज वेग में आए तो क्या करना चाहिए, भाई वेग के सामने खड़े, अगर तूफान आए सामने खड़े हो जाए तो आंखों में धूल पड़ेगी, तूफान को रोका तो नहीं जा सकता, फिर क्या करना चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, तो अपने आप वेग चला जाएगा, तूफान चला जाएगा। तो ये काम और क्रोध का भी वेग है, इसको जो सह सकता है, कौन सह सकता है, अर्जुन का सहना तो बहुत मुश्किल है, तो भगवान का सयुक्त है, जो मेरे से जुड़ जाएगा वो सह सकता है, अथवा जो जो मेरे से मेरे पास खड़ा हो जाएगा। एक बार पांचों पांडव कृष्ण के साथ जा रहे थे और अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र, एक भी नहीं, 5-5 पांडवों को मारने के लिए रवाना कर दिए। तो भगवान ने देखा तो सबको कहा तुम झुक जाओ, झुक जाओ, सामने से आ रहा है, तुम इसको प्रणाम करके झुक जाओ, ब्रह्मास्त्र का सम्मान करो, अपना आप चला जाएगा। तो भीम ने कहा कि मैं झुकना सीखा ही नहीं, वैसे खड़ा हो गया। रजोगुण हमको नहीं आता है। अब भगवान सब बाकी तो सब झुक गया, आप भीम नहीं झुका तो भगवान उसके आगे खड़े हो गए। तो ब्रह्मास्त्र भगवान के पास आया तो कुछ कर नहीं सका, नीचे बैठ गया। तो जो नहीं झुकता है उसकी भगवान कोई साथ दे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बह जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए रुकना बुद्धिमानी है। कौन ये सह सकता है? सयुक्त ससुखी नरा। इस दुनिया में सुखी रहने का एक ही साधन है कि काम को क्रोध को सहने की शक्ति पैदा करो। कब तक? जब तक जागते जीते और नौजवान हो। बुढ़ापे में सहन की शक्ति नहीं भी होगी तो कोई पूछेगा नहीं। चलते फिरते उठते बैठते सहन की शक्ति अपने अंदर पैदा करो। आज हम कहीं बैठे थे, बात ये कह रहे थे, जिसमें सहन शक्ति है वही सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष की और कोई परिभाषा नहीं है। जो कैसी भी परिस्थिति के अंदर अपना धैर्य न छोड़े वो साधु है, वो सिद्ध पुरुष है। और किसी भी कष्ट को समझे कि मेरे कर्मों का है, अच्छा है मैं इसको भोग लूंगा तो आगे मैं इस झंझट से बच जाऊंगा, ये जिसके मन में भावना आ जाती है वो साधु है, वो सत्पुरुष है और वो ही सुखी है। वो एक बच्ची सुबह बोल रही थी, वो वैसे जो संसार की बात है कि सांस की वजह से मैं परेशान हूं, तो तुम अब सहलो, इसलिए जब तुम सांस बनोगी तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो उस वक्त भोगना मुश्किल है, अभी तो जवान हो कोई बात नहीं सहलो, परंतु बुढ़ापे में परेशानी होगी तब तुम परेशान हो जाएगी, इसलिए अभी बर्दाश्त करने की ताकत पैदा करो तो अच्छा है। सहना है तो अभी सहलो। तो जो सहने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर सकता है, सहनशीलता सबसे उत्तम गुण है। तरोर अपि सहिष्णु ना, भगवान का ये वाक्य है, ये भगवान शिक्षा देते हैं, तरोर अपि सहिष्णु ना, वृक्ष की तरह अपने में सहनशीलता का गुण पैदा करो। जो दुनिया उसकी प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण भागवत में करते हैं, अपने ग्वाल बालों के संग जाते हुए वृंदावन में कहते हैं, देखो देखो भाई श्रीधामा सुधामा, देखो ये पेड़ कितने उधार है, सबको देते रहते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, फूल देते हैं, रस देते हैं, गोंद देते हैं, जो ये सारी जिनका सारा जीवन परोपकार का है। और इसी प्रसंग को कहते हुए कहते हैं ये पेड़ इन ब्राह्मणों से अच्छे हैं जो यज्ञ में स्वाहा करते हैं, और मैं मांगता हूं तो मेरे को खाने के लिए भोजन भी नहीं देते। ये भगवान ने भागवत में प्रवृक्षों को, ब्रज के वृक्षों को कर्मकांडी ब्राह्मणों से महान माना है। वहीं ये प्रसंग आता है कि इन वृक्षों को देखो कितने बड़े उधार हैं। सहनशीलता, वहां भगवान ने वृक्षों की महानता उधारता में किए, सबको देते हैं, देने वाले हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने वृक्ष को सहनशीलता का उदाहरण दिया है, गर्मी सर्दी सहकर काटने वाले को भी लकड़ी देता, काटने वाले को भी लकड़ी देता है। तो इतनी सहनशीलता अगर किसी के जीवन में आए तो वो असल में सुखी है संसार में। और हमारे से तो दो शब्द किसी के सहने की हम में शक्ति नहीं है, और तो बहुत बड़ी बात है। हमारा क्या कहते हैं, हमारा टेम्पर टेम्पर हमारा लूज कर देते हैं, तुम्हारा टेम्पर लूज हो जाता है क्योंकि तुम लूज हो, अभी तक तुम स्थिर नहीं बने हो। अपने को धैर्यवान बना। धैर्यवान का परिभाषा क्या है? कैसा भी प्रोवोकिंग सिचुएशन हो, कैसा भी लोग जबरदस्ती क्रोध दिलाने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहे। तो सामने वाला परेशान हो जाएगा, लेकिन ये गुण आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये गुण आना चाहिए जीवन में। कभी न कभी ये सहने की शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। और असल में घर गृहस्थी में, फिर घर गृहस्थी का सारा भार सहनशीलता के ऊपर है। घर तब चलेगा जब एक कहेगा दूसरा सुनेगा, तब नहीं तो घर चलेगा नहीं। सहनशीलता, सबसे घर सास बहू की बात छोड़ो, बेटे छोटे बच्चे जितना परेशान करते हैं कितना सहना पड़ता है, देखा है? इस दुनिया में गृहस्थी बहुत सहना सीखता है घर के अंदर। बच्चों का उधम मचाना देखा है घर के अंदर, उसको कैसे सह लेते हो? सहना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सहना बहुत मुश्किल है। कभी हम कहते हैं मन वश में करने के लिए कुछ परेशानी की बात नहीं है, बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हो, ऐसे ही मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करो। अब मन को क्या, अब बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हो घर में, क्या करते हो? पहले टैफी वाफी से काम चलाते हो, फिर खिलौने से काम चलाते हो, और जब इन दोनों से नहीं चलता है फिर तीसरा क्या हथवा है आपके पास? दे मारे अपने आप करके सो जाएगा। बस ये सबसे अच्छा हथियार है आखिरी, मन के लिए भी जब तक थप्पड़ नहीं मरेगी तब तक वो चुप करने वाला नहीं है। तो मन को थप्पड़ मारना ये सुख का साधन है, नहीं तो मन सारी उम्र थप्पड़ खिलवाता रहेगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है सतीश, है ना, सत के ईश, कि हम इस दुनिया में अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आए और हमने अपने ही कर्मों के अनुसार कुछ परिवार, कुछ सज्जन, कुछ बंधु, कुछ मित्र पहले से ही नियुक्त किए हैं तब हमको वो मिले। अब हमारे हाथ में इतना है, कोई कहे कि भाई कर्मों का ही सब कुछ है तो फिर अब करने से कुछ क्या होगा? नहीं नहीं, अब वही उदाहरण वापस, आप तो आपकी इच्छा थी या नहीं थी लेकिन टिकट लेके जहाज में चढ़ गए, अब आपकी इतनी स्वतंत्रता है कि दो घंटे जहाज में आप पास वाले आदमी से बात कर लो, हो सकता है कोई अच्छा बिजनेसमैन हो, आप नीचे उतरो तो आपका कारोबार चल जाए, इतनी बुद्धिमान का काम ये आपके हाथ में है कि नहीं जहाज में? और जो जलपान वाली आए तो उससे जलपान लो या नहीं लो ये आपके हाथ में है कि नहीं? किसी से झगड़ा कर लो अगर तो नीचे उतर दे पुलिस को बुला के अंदर करे, आपके हाथ में है? ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत से मूर्ख झगड़ा भी करते हैं ऊपर। तो इतना आपके हाथ में उन तीन घंटे में है कि नहीं? जब तक आप फ्लाइट में हो, चढ़ तो गए, आपकी इच्छा नहीं भी थी लेकिन चढ़ गए तो चढ़ गए, आप तो उतर नहीं सकते हो लेकिन इतनी आपकी स्वतंत्रता है उसके अंदर, किसी से मित्रता बना सकते हो, अपना जीवन बहुत पूरा बदल सकते हो, बहुत बड़ा झगड़ा करके उसके अंदर उपद्रव करके आतंकवादियों की तरह पूरे जहाज को ही उड़ा के ले जा सकते हो, ये तो आपके हाथ में है ना? तो ऐसे अब हम इस धरती के ऊपर किसी परिवार में आए हैं कि मतलब ये तो अब 50-60-70 साल तक इस जहाज में हम चढ़ ही गए, अब तो उतरने का समय नहीं है, अब ये है कि इसमें अब हम कैसे ठीक तरह से अपना अच्छा आदमी अच्छी तरह से कैसे व्यवहार कर लेता है। तो हमको कर्म को बदलना है, अभी कर्म की प्रक्रिया को बदलना है, ये बुद्धिमानता है हमारी। कैसे कर्म को बदलेंगे कि हम उसके फल भोगने के लिए दोबारा संसार के अंदर जन्म मृत्यु के चक्कर में न आए। पहले ये लोगों किसी की इच्छा भी नहीं है, सभी अभी वापस आने की इच्छा करके बैठे हैं। क्यों भाई, आपका विचार क्या है? सभी की अभी तो बहुत बड़े प्लान पड़े हैं, प्लान पूरे तो होने वाले हैं नहीं, तो वापस आना पड़ेगा तब प्लान पूरे होंगे ना। अब अपनी लिस्ट बना के बताओ क्या है, क्या प्लान है? फ्लैट बदलने का प्लान है, गाड़ी बदलने का प्लान है, हाँ, प्लान अनलिमिटेड है, ये बात सच्ची है ना? तो इसका मतलब अभी हम जो है वो अपना नया दूसरा शरीर अभी से निर्माण कर रहे हैं, हम अपने शरीर के निर्माता हैं, भगवान तो सिर्फ फैसिलिटी देता है। तो अब हमारे को निर्णय करना है कि हमें क्या करना है, हमारे को जीवन की शैली ऐसी बदलनी है कि दोबारा हमको ये कर्म के भोग के चक्कर को कैसे हम काटें, ये जो चल रहा है चक्कर इसको खत्म करना है, ये मानवता के मानव शरीर में केवल हो सकता है और किसी शरीर में होना संभव नहीं है, देवता के शरीर में भी संभव नहीं। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब ग्रंथों में मानव शरीर की महानता इसलिए कही है कि इसमें आप इस चक्कर को जो हो सकता है हजारों लाखों सालों से चलता हो लेकिन इसको तोड़ सकते हैं, ये आपके हाथ में, अब च्वाइस आपकी है, बाल इज इन यूर कोर्ट, ये आपके हाथ में है, आप ही अपने भविष्य के निर्माता हो, भगवान तो केवल अनुमंता है। अब आप अपना भविष्य कैसा चाहते हो, आप थोड़ा सा कभी कभी समय निकाल के ऐसा सोचो कि आप क्या चाहते हो, आपकी अपनी इच्छाओं का भी आपको पता नहीं है, असल में आप एक ऐसे इच्छाओं के जंगल में भटक रहे हैं, आपकी इच्छा है क्या वो भी आपको मालूम नहीं, पहले हम क्या है यही हमको मालूम नहीं है तो हमारी इच्छा हम क्या है हमको कैसे मालूम होगा। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कि हमें अपनी पहचान भी नहीं है, हम तो इस शरीर के स्तर तक ही अपने आप को पहचान के और इसी के अंदर थोड़े समय में जो शॉर्ट टर्म इसको हमारे सारे प्लान शॉर्ट टर्म है। बुद्धिमता यह है कि अब हम दोबारा ऐसी गलती न करें, इसके लिए क्या करना चाहिए, यह बुद्धिमता है। प्रकृति वशात, प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति हमारे को कैसे काम कराती है, जैसे बैल को नाक में रस्सी डाल के और गाड़ी में जोता जाता है, ऐसे प्रकृति हमारे नाक में रस्सी डाल के और हमको इस शरीर में जोतती है। प्रकृति वशात नियोजते, नाक में रस्सी डालती है प्रकृति, बैल की तरह हमको जबरदस्ती गाड़ी खींचनी पड़ती है, कौन सी, घर की खींचनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बहुत बड़ा परिवार, लंबा चौड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी की तरह खींचनी पड़ती है, बहुत बड़ा जोर लगाना पड़ता है, रोज जो काम करने वाले सबसे पूछ लो कैसी गाड़ी खींचनी पड़ती है, और बंधे हुए हैं, रस्सी दिखती नहीं है लेकिन बंधे हुए हैं सारे और ऐसे खींच रहे हैं गाड़ी, कहते हैं ये गृहस्थ की गाड़ी भाई खींच रहे हैं, ये तो बोल बाजा में आ गया ना, ये तो गाड़ी है ये खींचनी है। तो अब इच्छा क्या करनी है ये बोलो, आपका ये च्वाइस आपकी है। अब दो चार पांच अपनी इच्छा ईमानदारी वाली बोलना, किताबों वाली मत बोलना, हम गो लोग जाना चाहते हैं ये किताब वाली इच्छा है, असली दिल की इच्छा क्या है ये बोलना, असली इच्छा क्या है ये बोलना,
बड़ा घर बड़ी गाड़ी बड़ा बिजनेस
कुछ दिन पहले कोई कह रहा चांद पे बुकिंग कराने की सोचा था,
ये तो मूर्खों वाली बुकिंग, वैसे तो ये एक भगवत गीता में तो चंद्रलोक में जाने का सीधा रास्ता लिखा हुआ है, जाएगा जाते हैं लोग, ये तो मरने के बाद जाते हैं, ये जिंदा जाना पड़ता, ये तो ऐसी बुकिंग कराते हैं मरने के बाद मिलेगी, ये बुकिंग कराएंगे इसका मतलब जाएंगे चांद लोगों की, उनकी इच्छा है, पैसे बेकार में यहां चले जाते हैं, हम बुकिंग करते हैं चांद की, हमारे पास दे दो इसमें क्या कौन सी परेशानी है, ये तो पोस्ट डेटेड बुकिंग है, कौन ले जाएगा क्या पता। तो इच्छा 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 कुछ अपनी प्रकट ईमानदारी से करो, आपको एक ही इच्छा करने की इजाजत दी जाए तो क्या इच्छा करोगे, वन ओनली, हाँ क्या बोला बेटी, हम अपने कर्म फल की श्रृंखला को तोड़ दें, बहुत अच्छा, आप क्या कहनी है बोलो काजल, बच्चों को वैष्णवी बना दें, ये इच्छा है, ये अच्छा इच्छा है। वासुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु से एक बार प्रार्थना की कि सारे लोगों के पापों के फल मेरे सर के ऊपर डाल दो, इन सब लोगों को आप भगवान अपने धाम ले जाओ। वहां प्रभुपाद ने लिखा है कि ईसाई कहते हैं कि हजरत ईसा उसको पाप आपके लेगा और आपको पाप से मुक्त करेगा, तो जो जाएगा उसका करेगा, लेकिन वासुदेव दत्ता हजरत ईसा से ज्यादा उधार है, पूरी दुनिया के पाप बगैर मांगे लेने को तैयार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका उत्तर दिया कि कृष्ण असमर्थ नहीं है, कि तुमको पाप भुगाए और सबको मुक्त करे। ये ब्रह्मांड जो एक है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का नायक है भगवान। और एक सरसों का बीज नीचे गिर जाए तो क्या किसी को घाटा पड़ता? आपके किचन में सरसों का कभी एक दाना गिरता है तो कभी उसके लिए चिंता होती है क्या? हाँ, पता भी नहीं लगता है। तो एक पूरे ब्रह्मांड को भी भगवान ऐसे तार दे तो उसको कौन सा फर्क पड़ता है? तो कृष्ण असमर्थ नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण का कोई और काम नहीं है, कृष्ण नहीं और कृत्य। क्या काम है कृष्ण का? भक्त वांछा पूरी करे, भक्तों की इच्छा है केवल पूरी करता है। और तुम भक्त हो और तुमने इच्छा की है तो तुम्हारी इच्छा से ये वैष्णव बन जाएंगे तो अपने आप भगवत धाम चले जाएंगे। तुम केवल इच्छा करो कि ये भक्त बन जाएं तो फिर अपने आप इनके सारे समस्याओं का समाधान हो गया। तो एक इच्छा ये कि ये भक्त बन जाएं, ये बहुत अच्छी इच्छा है, ये सारे समस्याओं का समाधान है। और ये भगवान का सीधा डायरेक्ट आदेश है भगवत गीता में, भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। और जो भक्त बनाने की बात का इच्छा करता है, इसका मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहा है। ये इच्छा बहुत अच्छी इच्छा है कि कम से कम हम अपने परिवार वालों को वैष्णव भक्त बना सकें। वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु के भक्त। नहीं तो ये श्रृंखला चलती रहती है, इसमें कोई समस्या नहीं, तो अनादि काल से चलती आ रही है। कोई भाग्यवान होता है जो ऐसी इच्छा करता है।
शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है,
ये इच्छा न होने के बाद भी, ये इच्छा है फिर भी ना इच्छा, इसको निष्कर्म्य बोलते हैं। कर्म होते हुए भी इसका कोई फल नहीं है, इसको भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान की सेवा करने की इच्छा, ये हमारा अपना स्वरूप है, ये हमारी पहचान है, ये इच्छा नहीं है, ये हमारी अपनी पाहुपा जी की भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये हमारा स्वरूप है भगवान की प्रेम से सेवा करना। तो ये इच्छा नहीं है, ये हमारी पहचान है। यही भूलने के कारण बाकी सब इच्छाएं कर रहे हैं। ये हमारी पहचान है, ये मैनिफेस्ट हो जाए तो सब समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन क्या हमारी इच्छा ऐसी है क्या, ये मेरा प्रश्न है। हमारी इच्छा क्या है? अभी हरे कृष्ण, क्या इच्छा है भाई? क्या नाम प्रभु? विनोद, क्या इच्छा है? ईमानदारी से बोलो।
निरोगी रहे वो सुख शांति है, सबकी इच्छा यही रहती है कि निरोगी रहे वो घर में सुख शांति।
दोनों नहीं होंगे, सारी उम्र करते रहो भाई। निरोगी और सुख शांति, इस दुनिया का नाम है मृत्यु संसार। मृत्यु संसार है तो सबसे बड़ा रोग मृत्यु है, उसे कैसे बचेंगे? और यहां तो कोई चीज एक जैसी रहेगी नहीं तो शांति कहां से आएगी? तो ये तो कहते आकाश से फूल मांगने के बराबर है। ऐसी प्रार्थनाएं मूर्खों ने बनाई है निरोगी सुख, ये हो ही नहीं सकता है, ऐसे कहने का क्या फर्क पड़ेगा? बस ये गायत्री मंत्र का अर्थ है कि भगवान हमारी बुद्धि, हमको सद बुद्धि देना। और भगवान ने इससे भी थोड़ी बुद्धिमानी और ज्यादा ये है कि बुद्धि तो भगवान ने सबको दो टाइम रोटी कमाने की दी है, लेकिन बुद्धि योग नहीं दिया है भगवान ने सबको। नहीं, भगवान हमारे को सद्बुद्धि दें ये तो ठीक है, सद्बुद्धि भगवान हमको बुद्धि योग भगवान ही देते हैं। जब देते किसको देते हैं? अब भगवान कहेंगे तुम्हें सद्बुद्धि चाहिए तो भाई तुम भी कुछ दो। अगर आप भगवान से सद्बुद्धि मांगते हो तो भगवान कहते ठीक है मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन तुमसे भी कुछ मांगता हूं दो। मैं आपको कुछ मांगने की क्या जरूरत है भगवान, आप तो अपने आप में परिपूर्ण है, हमसे क्या लोगे? हम तो तुच्छ जीव है, हम कुछ नहीं देंगे, तुम हमको सब कुछ दो। भगवान कहते हैं हाँ मैं बुद्धि दूंगा किसको, भजताम प्रीति पूर्वक, तुम मेरा प्रेम से भजन करो मैं तेरे को बुद्धि दूंगा। सब बुद्धि मांगते हैं भगवान से, लेकिन भगवान कहते तुम कुछ करो, बोला ये नहीं होगा, आपको क्या जरूरत है भगवान मांगने की, आप तो परिपूर्ण हो अपने आप में, आप क्यों हमसे मांगते। बुद्धि तो वो देने को तैयार है, वो कहते मैं ददामी बुद्धि योगम, मैं देता हूं बुद्धि किसको, वो भी तो कुछ मांग रहे हैं ना, वो जो मांग रहे हैं उसकी मांग भी पूरी करनी चाहिए। विनोद का क्या इच्छा था, बोलो बोलो क्या इच्छा है, नहीं कितनी है कि उसमें एक चुन नहीं पा रहे हमने, ये एक चुनना मुश्किल है कि एक कौन सी चुनो। हाँ सच है कि झूठ है, इच्छाओं का अंदर इतना बड़ा समूह है, ये सियाने आदमी होते हैं ना, ये बुद्धिमान आदमी। वो साधु संत ने कहा भाई तुम बहुत सेवा हमारी की है, तुम एक चीज कोई मांगो तुमको जो चाहिए, और हम भगवान के प्रार्थना करेंगे आपका वो इच्छा पूरी होगा। फिर बोला कल मांगूंगा। घरवाले से पूछा कि महाराज तो बड़े राजी हुए हैं, इच्छा तो एक पूरी करने का वायदा कर दिया, अब तो करेंगे, क्या मांगना चाहिए। तो घरवाले ने बोला हमारे को तो पुत्र संतान नहीं है, हमको तो घर में बेटा चाहिए। बूढ़ी मां बैठी थी दादी की तरह, उसको पूछा कि अम्मा तुम्हारे को क्या चाहिए। महाराज बड़े खुश हुए, बोले बेटा देखती नहीं हो, आंखें मिले तो अच्छा है। और अपने इच्छा मन में ये थी कि काम धंधा ठीक चलना चाहिए, घर परिवार चलना चाहिए, अब तीन इच्छाएं हो गई, अब एक कैसी चीज कैसे मांगे। तो सोच के सुबह गया महाराज ने कहा क्या चाहिए बोलो, एक इच्छा है तुम्हारे को चॉइस है। बोला महाराज मेरी बूढ़ी माँ अपने पोते को सोने के झूले में झूलता देखना चाहती है। मेरी माँ अपने पोते को सोने के झूले में झूलना देखना चाहिए। अब माँ की आंख होगी तब देखेगी, और पोता बेटा होगा तब पोता देखेगी, और सोने का झूला पैसा होगा तब आएगा। महाराज ने कहा अभी बहुत इच्छाएं तुम्हारी, एक नहीं है। तो हमारी इच्छाएं ऐसी है, बुद्धिमानी से मांगने में बड़ी बुद्धिमानी, चतुराई से मांगते हैं। वैसे चतुराई से चतुर्भुज कभी हाथ नहीं आएगा, उन्हें चार हाथ रखे तुम्हारे दो हाथ है क्या करो।
ऐसी कहानी पड़ी थी, भगवान ने दर्शन दिए किसी को, बोले अच्छा एक वरदान मांगे क्या मांगे, बोले अच्छा जी एक इस वरदान के दो हो जाए, बोले अच्छा चलो ठीक है चलो कोई कर दिया। अब पहला वरदान ये कि इसके दो हो जाए, दूसरा वरदान ये इसके दो हो जाए, ऐसे हजारों पैदा कर सकती है, एक एक करके चुनना हो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उसके पहले हजार बना लीजिए।
तो असल में ऐसा ये बात सिर्फ हमारी मानसिकता बता रही है कि अब ऐसे कुछ इच्छाएं कम करना शुरू करो असल में। और नहीं तो बाजार में खरीदारी करने जाते हो ना तो बहुत सी चीजें देख के मन करता है ये लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त कहो कि ये क्या इसकी मुझे जरूरत है क्या, तो अंदर से आवाज़ जरूरत तो नहीं, फिर क्यों लेते हो, उसके घर में देखी थी ना। अरे उसके घर में देखी तो उसके घर में, तुम्हारे घर में क्या जरूरत है। तो ऐसे कम से कम कुछ इच्छाएं तो काटो, आप एक्सपेरिमेंट इतना अपने जीवन में तो करके देखो कि कहीं बाजार में जाने से कितनी चीजें लेने की इच्छा होती है बेकार में, देखा है, और लाने के बाद घर में जाके देखो कितनी चीजें बेकार में पड़ी है, जो हम लाए थे उस दिन शौक से लाए थे आज तक उसे काम में नहीं आई। हम अपने आप को देखते हैं, बहुत सी चीजें लाए हैं बाहर उठा के धोते हैं किसी काम की नहीं है, जगह घर में रोक के बैठी हुई पड़ी हुई। ये तो इच्छाएं कम से कम करो, कम कर कहीं से शुरू तो करो, कहीं से तो इच्छा कम करना शुरू करो, कहीं से शुरू करना पड़ेगा। कम से कम इसको सादा जीवन कहते हैं, कम से कम जीवन की इच्छाएं इधर रहने वाली तो थोड़ी सिंपल करके देखो भाई, चार जोड़े से तीन में काम चल जाएगा तो चार क्या करूं, ये तो किसी को आपको अच्छा लग रहा है ये, जोड़े कम करने वाली बात कपड़ों के है, बड़ी परेशानी है। तो एक ये तो बाहर पहनने वाला, ये शॉपिंग वाला, ये पार्टी वाला, क्या ये ड्रामेबाजी है। मैं सोचा कि बैग उठा के जाना, कितने जोड़े ले जाने। मैं देखा कि मेरे को मैक्सिमम तीन तो बहुत हैं, एक सिर्फ स्पेयर के लिए, नहीं तो दो में काम चल सकता है। तो काय के लिए 10-20-25 भय उठा के बाहर सर के ऊपर ढो के जाना। तो आस्ते आस्ते सिंपल जीवन में रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम कहते अपनी गाड़ी में जब आदमी जाता है ना कहीं, तो कुछ भी कचरा उसमें डालेगा, डिक्की में डालो, इसमें ये भी डालो, वो भी डालो, वो भी डालो। जब ट्रेन में जाएगा पता लगेगा उठाना है चढ़ाना है, तो थोड़ा कम करेगा। और जब जहाज में जाने तो वो तोलेंगे, 20 से ज्यादा नहीं लेंगे, तो और कम करेगा। तो ये कि हमको आता है कि थोड़े से काम चल सकता है, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हमारा ज्यादा ज्यादा का ये मन का जो हवस है, इसको बोलते हैं ना, ये होना चाहिए, वो बीमारी। तो चल सकता है जहाज में, सब जाते हैं तो 20 किलो में काम चलता है कि नहीं चलता है? पैसा देके कोई एक्स्ट्रा नहीं ले जाता है, बहुत इमरजेंसी हो तो दूसरी बात है, नहीं तो कोई नहीं ले जाता है। तो इसका मतलब थोड़े में काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है? तो ऐसे हमको अपने जीवन को थोड़ा सा सिंपल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तब हमारे पास थोड़ा समय बचेगा ये समझने के लिए कि मानव जन्म में करना क्या है। हम इतने उलझे हुए हैं, इतनी चीजों में उलझे हुए हैं, इतनी चीजों में उलझे हुए हैं कि ये समय भी नहीं निकाल सकते कि 2 मिनट बैठ के भगवान का सुमरण करना, निकाल नहीं सकते। हम इतने उलझे हुए, मतलब कुछ बेकार की चीजों में उलझे हो जिसका कोई मतलब नहीं। जब तक ये जीवन सिंपल नहीं बनाएंगे, सादा जीवन नहीं बनाएंगे, एक देखा देखी में मारे गए हैं, मुफ्त में, सिर्फ देखा देखी में सबसे ज्यादा मारे गए हैं। उसको थोड़ा सा जीवन को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये पहला टेस्ट है हमारा कि अगर वाकई हम आध्यात्मिक रास्ते में चलना चाहते हैं तो हमको थोड़ा जीवन को सिंपल बनाना चाहिए, थोड़ा सरल जीवन को बनाना चाहिए। जितना कॉम्प्लिकेटेड जीवन बनाएंगे उतना गलत काम करने का मजबूरी हो जाएगी करना। सरल जीवन हमारे को सत्य की तरफ लाएगा। अगर जीवन सरल होगा तो आदमी सत्य से ऊपर चल सकता है। तो जीवन को सरल कैसे बनाया जाए? सादा जीना, मतलब सादा खाना, सादा पहनना, ये सिंपल से यहां से शुरुआत होता है। सादा जीवन, सादा खाना, सादा पहनना, सादा रहना, इसको सादगी बोलते हैं, इसको सिंपल जीवन बोलते हैं। तो यहां से शुरू करना चाहिए ना कम से कम। असल में वो हमारा एक प्राकृत चिकित्सा का डॉक्टर है, वो कहता है कि गले से नीचे उतरने के बाद पेट को कुछ पता नहीं क्या डाला, उसको तो चाहिए भत्ता कि गाड़ी चलनी चाहिए। ये सिर्फ जबान की टेस्ट के लिए हम इतना बड़ा झमेला करते, सिर्फ जबान की टेस्ट के लिए हम ये सब मुश्किल उठा रहे हैं। वरना गले के नीचे जाने के बाद तो के, 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 पेट को तो भाई तो 2500 कैलोरी चाहिए 1800 बस, वो किससे मिलेंगी? केवल चावल घोल के पी लो तो भी गाड़ी शरीर चल जाएगा। सिर्फ जबान की टेस्ट की वजह से इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस टेस्ट में फंसे हुए। जबान की टेस्ट आदमी को इतना फंसा के रखा है। वैसे भी किसी को बोले क्यों इतनी सारी मेहनत करे, बोला 2 टाइम का खाना है, यही कहेगा ना, रहने की बात नहीं करेगा, खाने की बात करेगा, 2 टाइम का खाना पेट के लिए कर रहा हूं। किसी को बोलो बोलेगा पेट के लिए कर रहा हूं, पेट के लिए नहीं कर रहा है, जबान के लिए कर रहा है। पेट का काम तो चल सकता है, वो भी कहने में हम बड़े होशियार हो गए, पेट के लिए कर रहे हैं, जबान के लिए कर रहा है, टेस्ट के लिए कर रहा है। कुछ मुश्किल नहीं, सिंपल जीवन हो सकता है। साधु महात्मा सिंपल जीवन बिताते थे, कोई मुश्किल नहीं था, और ज्यादा जीते थे, अच्छा जीते थे। जो भी हो, आज हम अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आए हैं, और अब हमको इस कर्मों के चक्कर की श्रृंखला को भक्तों के संग में बैठकर गीता भागवत का अध्ययन करके तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे लिए चांस है, इसको हमको भुलाना नहीं चाहिए। और इतना कोई मुश्किल नहीं है ये करने के लिए, कलयुग में सरलता से ये भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा आरंभ किया जा सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है? यही संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते।
मेरा सवाल यह था कि जैसे देवता मतलब ये अपना संसार टाइम भोगने के बाद फिर नीचे ही आना पड़ता है, या ये जैसे इंसान प्राप्त कर लेता है ईश्वर को तो ये प्राप्त कर?
प्रायः देवता देव योनि से